الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. دو عورتوں سے کسی نے کہا کہ شادی کر لو. انہوں نے کہا کہ اچھا شادی کیا کرنا ہوگا؟ کہا دیکھو تمہارا جو شوہر ہوگا وہ تمہارا مجازی خدا ہوگا، تم نے اس کو خدمت کرنی ہے، شوہر کے ناز اٹھانے ہیں، کھانا پکا کے دینا ہے، کپڑے دھونے ہیں، ساس کی باتیں بھی سننی ہیں، اور کچھ کھٹ پٹ نند سے بھی ہوگی، کبھی کبھی شوہر غصہ بھی کرے گا. کہا اور کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تم ماں جیسا مقدس رشتہ، یہ نعمت تم کو ملے گی، اور اس کے بعد پھر تم نانی بھی بنو گی، دادی بھی بنو گی. تو ایک عورت نے کہا کہ یہ غلامی ہم سے نہیں ہوتی، ہماری زندگی آزاد اچھی ہے کہ شوہر کی باتیں سنیں، ساس کی بھی باتیں سنیں، ننوی کہیں جیٹھانی دیورانی ہو وہ بھی، اس سے ہم آزاد اچھے ہیں، زندگی ہے یہ ٹھیک ہے. اس عورت کی زندگی گزر جائے گی. لیکن وہ جو مقدس رشتہ کہ جس کو ماں کہا جاتا ہے، ایک عورت نے بات مان لی اور ایک نے نہ مانی. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گی، ایک نے کہا اچھا چلو منظور ہے، ہمیں یہ سب باتیں منظور ہیں. اب کبھی شوہر بھی غصہ کرتا ہے، اس کو بھی برداشت کر رہی ہے، کبھی روٹھ جاتا ہے تو مناتی بھی ہے. ساس یہ اسی طرح جو زندگی کے دن گزرتے ہیں، لیکن یہی عورت پھر ایک ماں بن جاتی ہے. اب وہ ماں بننے کی جو خوشی ہے، وہ عورت اس کو سمجھ نہیں سکتی کہ جس کی اولاد نہ ہو. اور پھر بلکہ شوہر کی جو ایک بہرحال اگرچہ کھٹ پٹ بھی ہو، اس کے باوجود جو شوہر کی توجہ اس عورت کو حاصل ہوگی، وہ دوسری عورت اس کو سمجھ نہیں سکتی. ایک ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن شپ کے اندر کیا محبت اور کیا لو اینڈ افیکشن، یہ جو چیزیں ہیں وہ دوسری عورت اس کو نہیں سمجھ سکتی. زندگی گزری، یہ نانی بھی بن گئی، دادی بھی بن گئی. اسی طریقے سے یاد رکھیے، حالانکہ وہ عورت جو کہ جس نے شادی کی وہ بظاہر زیادہ پابندیوں میں نظر آتی ہے کہ جی ابھی شوہر آنے والا ہے، ابھی روٹی پکانی ہے، ابھی کپڑے دھونے ہیں، ابھی فلاں چیز کا وہ کو مینج کرنا ہے، ابھی بچوں نے اسکول سے آنا ہے، ابھی اسکول جانے کا ٹائم ہے. تو بظاہر زیادہ پابندیوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ لذت اس عورت کو جو ملتی ہے، وہ غیر شادی شدہ جس نے زندگی بغیر شوہر کے گزاری اس کو سمجھ نہیں سکتی. وہ اسی طریقے سے یاد رکھیے، یہ جو دین پر عمل کرنا ہے نا، بظاہر یہ بڑی پابندیاں نظر آتی ہیں کہ جی اب فجر کی نماز پڑھو. کیا اچھا تھا اگر فجر کی نماز، چلو اٹھیں گے، سردی اتنی زیادہ ہے تو اٹھیں گے، پھر اٹھ کر آرام سے پڑھ لیں گے. یہ تو فرائیڈے نائٹ ہے نا، ویک اینڈ ہے، چلو اٹھ کے آرام سے پڑھ لیں گے، کون اتنی صبح اٹھے اور پھر وہ بھی مسجد پڑھنے کے لیے جائے نماز. पहली बात तो ये कि इनको वो जो वीक के 5 days है, मंडे टू फ्राइडे, उस दिन ये बात सब याद नहीं आती। जरा ऑफिस में फोन करके कहते क्या आप इतनी सुबह सुबह बुला लेते, इसलिए मैंने यहां आकर कहा आज ही सुबह मुझे जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो अहमद भाई मुझे लेकर आए तो मुझे एक साथी को फोन करना था सिडनी में, तो मैंने कहा मैं उनको फोन करता हूँ। फिर खुद ही मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर तो सुबह वर्किंग डे में अगर सुबह 6 बजे भी फोन कर लो तो वो फौरन फोन उठा लेगा कि पाकिस्तान नहीं है। तो आप देखिए कि वही जो इन पाबंदियों में जिंदगी गुजारता है, जो उस औरत की मिसाल की तरह, मेरे दोस्तों जो शरीयत की जो बज़ाहिर पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों में अल्लाह ताला ने जो लज्जत रखी है, ये वो शख्स उस चीज को समझ नहीं सकता जो शरीयत की बज़ाहिर इस पाबंदियों को फॉलो करता है और उस पर अमल करता है। लिहाजा अब एक महीना आने वाला है, मिसाल है एक महीना आने वाला है जिसको रमजान शरीफ कहते हैं। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब फरमाते हैं कि एक मौलवी साहब किसी गांव में गए और वहां पर उन्होंने जाकर तकरीर की कि देखो रमजान शरीफ आने वाले हैं और आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखना है और रोजा नाम है न खाना है न पीना है, भूखा भी रहना होगा। अब देहाती तकरीर सुनते रहे, तकरीर से फारिग हुए, रमजान के मुतालिक कुछ बातें की, तो तकरीर से पूछा कि मौलाना साहब वो रमजान शरीफ आते कहां से हैं? तो वहां साहब ने कहा कि देखो जो मगरिब है ना यानी वेस्ट, वहां से वो आते हैं क्योंकि चांद वहां से निकलता है, तो वो चांद निकलता है, चांद देखते तो फिर रोजा रखते। हजरत ने वाक्य सुनाया कि अब उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब वो मौलाना साहब तकरीर करते करते वो आगे चले गए। पूछा कब आएंगे कि जब ये शाबान की 29 हो जाएगी या 30, तब उसके बाद वो। अब वो उस रात को सब देहाती गांव वाले डंडा लेकर पहुंच गए मगरिब की तरफ, वेस्ट की अपने गांव के। तो एक शख्स ऊंट पर बैठा चला आ रहा था, तो अब उसने एकदम देखा कि यहां इतने लोग जमा, वो भी डंडे लेकर। अब ये लोगों ने तो पहले वो परेशान थे रमजान से कि सुबह से लेकर शाम तक हमें भूखा प्यासा रहना होगा। उन्होंने पूछा है भाई तुम्हारा नाम क्या है, ऊंट वाले से पूछा। तो उसने कहा भाई मेरा नाम रमजान अली है। उसने कहा यही है, मारो इसको। अब गांव वाले ने जो डंडे बरसाना शुरू किए, वो बेचारा परेशान कि भाई मेरा क्या कसूर है कि मुझे इस गांव से डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। अब उसको वापस भेज दिया। अब मौलाना साहब रमजान शरीफ के बाद फिर अपने बयानात करते करते वहां पर पहुंचे, गांव वाले से आकर मिले, हाँ भाई रोजा रखा था। तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कि मौलाना साहब हम पर तो रोजा फर्ज ही नहीं हुआ। कहा भाई क्यों? कहा वो असल में जो रमजान अली आया था हमने उसको गांव में आने ही नहीं दिया, इसलिए हम पर रोजा फर्ज नहीं हुआ। तो सुबह से लेकर शाम तक वो जो भूखा प्यासा रहना, वो जो रमजान शरीफ में है, हदीस शरीफ में आता है कि जो रोजेदार है लिस्फाइमी फरहतान, कि वो जो रोजेदार के लिए उसके लिए खुशी है, फरहत है, खुशी है, और वो दो खुशियां हैं उसके लिए। उसमें से तो एक खुशी उसकी ये है कि जिस वक्त वो रोजा इफ्तार करता है उसमें जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लज्जत रखी है, ये वो आदमी समझ नहीं सकता कि जिसने रोजा न रखा हो। ठीक है ना? लिहाजा आप देखिए हमारे बड़े बूढ़े ऐसे हैं कि जो कि अपनी तबीयतों की वजह से कि उम्र की ज्यादती है, किसी को कोई डायबिटिक्स है, कोई टेंशन, कोई बीमार यानी, और फिर कमजोर हो गया, तो उसके बच्चे जो है वो ले जाते हैं उसको, उस बड़े साहब को डॉक्टर के पास। कि डॉक्टर साहब इनके जरा आप चेकअप करें कि रमजान शरीफ आने वाला है, और अब्बा कहते हैं मैं रोजे रखूंगा, तो डॉक्टर साहब इनको समझाएं। हमने अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब से पूछ लिया, क्योंकि इनकी तबीयत ऐसी कि रोजा ना रखे, और मौलाना साहब ने भी कह दिया कि हाँ भाई आपके लिए फतवा है कि अब आप रोजा न रखें, आपके लिए रुख्सत है, इजाजत है, आप फिदिया दे दें। डॉक्टर साहब आप इनको समझाएं, डॉक्टर साहब भी इनको समझाते हैं। अब जनाब रमजान शरीफ, अच्छा जी बहुत अच्छा, वो बड़े साहब भी क्या करते हैं, वो बड़े साहब भी वो बात सुनते हैं, और बच्चे रात को रमजान शरीफ रोजे से पहले क्या बात है कुछ और? अच्छा वहां से उन्होंने अपने वहां, ठीक है, रात को सोने से पहले बच्चे कहते हैं देखें अब्बू आपने उठना नहीं है, आपने रोजा नहीं रखना। लेकिन आलम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं आलम ये होता है कि वही बड़े साहब सबको सहरी के लिए उठाते हैं, कहते हैं बेटा रोजा रख लो, सहरी कर लो जल्दी से, अब बहू भी उठ रही है, बेटे को भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं। और वो बड़े साहब बावजूद इसके के आलिम ने भी फतवा दे दिया, डॉक्टर ने भी समझा दिया, फिर भी वो रोजा रखता है, आखिर इसकी क्या वजह? उसकी वजह वो लज्जत है, इसकी वजह वो लज्जत है जो अल्लाह ताला ने बजाहिर तकलीफ है लेकिन उस तकलीफ में जो लज्जत रखी है, तो रोजेदारी समझ सकता है। जैसे गर्मी का जमाना आता है, रोजेदार जब रोजा रखता है तो शाम को जिस वक्त रोजा खोलता है ना, कहता है भाई सुबह रोजा नहीं रखना, ऐसी गर्मी नहीं भाई बर्दाश्त नहीं होती हमसे, असर के बाद जाकर तो नहायत तबीयत बहुत वीकनेस और बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन आप देखते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात देखते हैं कि सुबह सहरी के वक्त में वही शख्स जो शाम को कहता है मैं रोजा नहीं रखूंगा, वो सामने सबसे आगे वो बैठा हुआ होता है। क्यों? आखिर कोई लज्जत है ना, अल्लाह ताला ने बजायर पाबंदी है, सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा प्यासा भी है, लेकिन उस पाबंदी के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो लज्जत रखी है, वो आशिक अल्लाह ताला का उस लज्जत को छोड़ने को तैयार नहीं है। ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा प्यासा रहता है। इसलिए हदीस शरीफ में एक दुआ यू भी आई है, रोजे को इफ्तार करने के बाद ज़हब वमु, कि वो जो मेरी प्यास थी वो प्यास चली गई, जब रोजा इफ्तार किया उस प्यास में जो उसने पानी पिया, शरबत पिया, कभी अल्लाह ताला जमजम भी अता फरमा देते हैं, उसकी लज्जत होती है कि वो ज़हब वमु वो तल्लतिल उरूक, वो जो रगे हैं, वो जो सूख गई थी वो भी रगे, वो जो खुश्क हो गई थी अब वो तर हो गई है, यानी जो ड्राई हो गई थी अब वो दोबारा वेट हो गई है, ऐसी खुश्की आ जाती है ना। और फिर आगे फरमाया वसबत अल अज्र, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि मेरे इस रोजे पर मुझको अज्र अता फरमाएंगे। लिहाजा दिन भर अल्लाह ताला ने उसको रोजा रखवाया, अब वो रोजा रखा उसने, और उसकी लज्जत को वही आशिक ही समझ सकता है कि उसमें क्या लज्जत है। इसलिए मुसलमान एक जुमला अक्सर मुसलमान कहते हैं, और वो ये कहते हैं खुद कि रमजान की जो लज्जत होती है वो बाद में नहीं होती, हालांकि उस लज्जत में क्या है कि सुबह को वो सुबह से लेकर शाम तक रोजा रख रहा है, फिर शाम को तरावी भी पढ़ रहा है। बल्कि आप मस्जिद में तमाशा भी देखते होंगे, जब चार रकात हो जाती है ना तो खुद ही अपने पैर दबाता है, ये मैं दिखा रहा था कि अपने पैर कह नहीं रहा था लेकिन उसके बावजूद जब वो 20 रकात तरावी पढ़कर फारिग होता है तो क्या चीज है कि उसी मुसलमान को अगले दिन उस दोबारा मस्जिद में ले आती है, जब जो 20 रकात पढ़ के कहता है, कहता आज बहुत थक गया, आज रोजा भी लग रहा था थक भी गया, अगले दिन वो रोजा दोबारा रखता है और अगले दिन तरावी में फिर पहले सफ में मौजूद होता है, वो क्या चीज है? लज्जत है ना। वो मजा है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा
है।
इसलिए रमजान शरीफ ऐसी चीज है, इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा होता है और उस भूख प्यास की वजह से यानी रमजान में दो इबादतें खास रखी, एक तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना, लेकिन ये अल्लाह के लिए हो और इसमें नीयत का दखल है कि मैं अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहूंगा। क्योंकि अगर कोई आदमी वैसे ही भूखा प्यासा रहे और वो रोजे की नीयत ना करे तो उसका रोजा नहीं है, उसको भूखा प्यासा है। अब सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा प्यासा रहा, उससे वो कमजोरी आई, वीकनेस पैदा हुई, लेकिन और फिर अब शाम को अब उससे उसका दिल भी टूटता है, यानी टूटा हुआ दिल ऐसा होता है कि बहुत ही लो प्रोफाइल हो जाता है वो। अब शाम है, अब उसका दिल टूटा, शाम को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 20 रकात तरावी रखी। 20 रकात तरावी का मतलब है एक रकात में दो सजदे होते हैं। और ये दो सजदे की इब्तिदा कैसे हुई? जिस वक्त अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को और उसके साथ शामिल था इबलीस, जिस वक्त उसका नाम था अज़ाज़ील, उस वक्त उसका क्या नाम था? अज़ाज़ील, फरिश्तों जैसा नाम, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, उसका नाम क्या था? अज़ाज़ील। मेरे शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते फसजदू इल्ला इबलीस, इबलीस के अलावा सबने सजदा किया। जब फरिश्ते सजदे से उठे तो देखा कि शैतान अकड़ा खड़ा हुआ है, तो वो दूसरे सजदे में चले गए। वो जो पहला सजदा है उसको इल्मी इस्लाम में कहते हैं अमरे ताबुदी, यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया, दादा उसका नाम है कि हुक्म को बजा लाना, ऑर्डर को फॉलो करना। और जो दूसरा सजदा उन्होंने इसलिए किया फरिश्तों ने कि उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने क्रम से हमें तौफीक दी और ये शख्स करके खड़ा रहा, दादा उन्होंने इस शुक्र के तौर पर दूसरा सजदा किया। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि हर रकात में दो सजदे किए जाते हैं। दादा इसी तरीके से जब इंसान से नमाज में गलती होती है और वो गलती नमाज के वाजिबात से मुताल्लिक है, नमाज में कुछ चीजें फर्ज होती हैं, कुछ चीजें वाजिब होती हैं, कुछ चीजें सुन्नतें होती हैं, बाज चीजें मुस्तहबात होती हैं, बाज बातें ऐसे हैं कि जिससे नमाज में मकरूह कहलाती है, नापसंदीदा बात, और बाज बातें ऐसी होती हैं कि जिससे नमाज टूट जाती है। फराइज की मिसाल ऐसी है कि जैसे खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये नमाज में फर्ज है। अगर कोई आदमी बगैर किसी वजह के, यानी मरीज नहीं है और बगैर किसी वजह के अगर उसने बैठकर नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर कोई आदमी बगैर किसी वजह से बैठकर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। सिर्फ नफिल के अंदर इजाजत है कि नफिल नमाज बगैर किसी वजह के भी बैठकर पढ़ी जा सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका सवाब 50% ऑफ हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, बल्कि क्योंकि ऑफ के अंदर तो अट्रैक्शन होती है और रिडक्शन में अट्रैक्शन नहीं होती है, सही है ना जनाब? तो उसका सवाब भी 50% रह जाएगा। अगर कोई आदमी नफिल नमाज बैठकर पढ़ेगा तो उसको इजाजत है कि नफिल नमाज बैठकर बगैर किसी वजह के भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसका सवाब आधा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितनी नमाजें हैं वो बैठकर नहीं पढ़ सकते, चाहे जहाज में भी हो, क्योंकि जहाज में बाज़े लोग क्या करते हैं कि जब सफर करते हैं तो वो अपनी ही सीट पर बैठकर नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसमें दो खराबियां हैं, दो कमी है। नंबर एक तो ये कि डायरेक्शन, अब जैसे हांगकांग, यानी कराची से अगर जहाज ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क़िबले के। अब वो जहाज पर बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे, तो याद रखिएगा इससे नमाज नहीं होती। ऐसे वक्त में बाद लोग एक बात कहते हैं, जी सुन लेते ना उलमा से कि जी तहरी कर लिया हमने, ये लफ्ज सुना है ना कि जी सोचा आपने, ख्याल किया, बस वो डायरेक्शन वाले हमने भी तहरी कर ली। इस जमाने में तहरी का ये मसला ही नहीं है, पूरे जहाज में तो पूरा मैप नजर आता है और प्रैक्टिकली हर आदमी को मालूम है कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो कैसे उसकी नमाज होगी? सही ना जनाब? लेकिन उस वक्त में भी जहाज में भी पूरा मैप आजकल दिखाया जाता है और उसमें आपके लिए बहुत आसान है कि आप उस मैप की डायरेक्शन में आप नमाज, यानी वो तहरी का मसला ये नहीं है आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट। बल्कि आजकल तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे मोबाइल फोन वगैरह, उसके अंदर तो डायरेक्शन का कोई इशू ही नहीं है। तो एक खराबी क्या हुई कि क़िबले की तरफ नहीं है। नंबर दो खराबी ये कि बैठ कर पड़ी बगैर किसी वजह के। अब एक सवाल आता है, वो सवाल ये कि जी अगर हम जहाज में खड़े होते हैं तो इस बात का डर और खौफ है कि झटका लगने से हम गिर जाएंगे, जैसे ट्रेन है। यहां की ट्रेन पे तो अभी मैंने सफर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेन में तो डर और खौफ जरूर होता है। तो याद रखिएगा कि उस वक्त में भी बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, अगरचे डरने गिरने का डर और खौफ हो। कहा सर शरीयत इतनी जालिम? नहीं, शरीयत इतनी जालिम नहीं है। अगर डरने गिरने का खौफ है या गिर सकता है तो पकड़ कर खड़ा हो जाए, लेकिन बैठ कर ना पड़े। ठीक है साहब, शरीयत ने आजादी आसानी दी है कि आप पकड़ के खड़े हो जाए, यानी आप जहाज में नमाज पढ़ें कोई सहारा ले लें और कोई चीज है उसको पकड़ कर खड़े हो जाए ताकि गिरने से बच जाए, लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़े। ठीक है जनाब? तो नमाज में खड़े होना फर्ज है। बात चीजें नमाज में वाजिबात होती है। नमाज के वाजिबात में से जैसे एक वाजिब है, ये नमाज की एक तरतीब है कि खड़े हुए, खड़े होने के बाद रुकू किया, उसमें किरात वगैरह की, फिर रुकू किया, रुकू से फिर सीधे खड़े हुए, फिर एक सजदा किया, बैठे, दूसरा सजदा किया, फिर पहली रकात के बाद सीधे खड़े हो गए, फिर उसके बाद दूसरी रकात इसी तरह पड़ी, फिर दो रकात के बाद बैठना होता है। इस जो ये जो तरतीब है ये वाजिब कहलाती है। इसी तरह और भी वाजिबात है, उनमें से एक ये तरतीब भी है। तो ये जो तरतीब वाजिब है, अगर किसी ने इसकी तरतीब के खिलाफ कर लिया, मसलन सजदे के बाद बैठना था, खड़ा हो गया, खड़ा होना था या बैठ गया, तो उस सूरत में भी आखिर में सजदा साफ किया जाता है। ठीक है जनाब? नमाज की सुन्नतें क्या चीज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नतें सिखाई हैं, उन सुन्नतों में से एक सुन्नत यह भी है कि जब खड़ा हो तो पांव बिल्कुल सीधे हो, क़िबले की तरफ रखो, एक सुन्नत उसमें यह भी है। और नमाज की सुन्नतों का मसला यह है कि अगर किसी आदमी ने जानबूझकर नमाज की सुन्नत छोड़ दी, तो वो सुन्नत के छोड़ने का गुनाह मिलेगा उसे, लेकिन उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जनाब? नमाज मुकम्मल होगी लेकिन सुन्नत छोड़ने का गुनाह मिलेगा, जानबूझ के क्या। नमाज के मुस्तहबात वो हैं, मुस्तहब अरबी ग्रामर के एतबार से यानी मोहब्बत को हासिल करना, अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने वाली की चीज है। और इसकी मुस्तहब की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी फंक्शन में जाना है, कहीं किसी सेरेमनी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो उस वक्त आदमी अपना सबसे अच्छा लिबास पहनता है, कहते हैं फलां वाला निकालो जरा, अच्छा तैयार होकर जाना है। हालांकि वहां खाना ही खाना है, अगर आदमी उस लिबास में ना जाए खाना फिर भी मिलेगा, लेकिन कहते हैं नहीं साहब, जरा थोड़े से उस माहौल को, उस एनवायरमेंट को आपने देखना होता है। तो इसी तरीके से नमाज के मुस्तहबात में से एक ये चीज है कि उमदा कपड़े पहनकर नमाज पढ़े, साफ सुथरा हो, खुशबू भी लगा ले, तो ये और अच्छी चीज है, ये मुस्तहबात है। नमाज के मकरूह क्या चीजें? जैसे अपने कपड़ों से खेलना, ना कपड़े अपना ऐसे नमाज में भी सेटिंग करते रहते हैं, खड़े हुए हाथ बांधते हुए भी जो है जरा क्रीज मेरी खराब ना हो जाए, तो ये मकरूह चीज है, नापसंदीदा काम हरकत है। और नमाज की वो चीजें जिससे नमाज टूट जाती है उसको मुफसिदात सलात, नमाज को तोड़ देने वाली चीजें कहा जाता है। और उन चीजों में से एक चीज ये है जैसे खुजली पे खुजली किए जा रहा है, कभी नाक में खुजली, कभी कान में खुजली, कभी सर में खुजली, और देर तक करते रहना, कैसा है कि अगला आदमी देखे ये नमाज नहीं पढ़ रहा। इसको अमले कसीर इल्मी इस्तलाह में अमले कसीर कहते हैं। ये थोड़ा सा तारुफ हो गया। अब मैं बात बता रहा था कि नमाज में अगर गलती हुई तो उस गलती पर आखिर में सजदा साहब करते हैं, दो सजदे करते हैं। मेरे शेख फरमाते हैं कि हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कराची के अंदर रहते थे, हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, और हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम के भी शेख हैं। तो वो फरमाते हैं, उनकी बात मेरे शेख ने नकल की कि जब इंसान नमाज में गलती करता है तो ये शैतान उसको बहकाता है। लादा एक शैतान हदीस शरीफ में आता है, मुकर्रर है, जो मुसलमान को नमाज में बहकाने की कोशिश करता है, उसके ख्यालात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए नमाज में ख्यालात का मसला सुन लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो याद रखिएगा, एक है ख्याल का आना और एक है ख्याल का लाना, सही है ना जना? एक तो है वो खुद आ जाए, तो ख्याल आए उसकी तरफ तवज्जो ना करें, कहते हैं डोंट पे अटेंशन, आप तवज्जो ना करें उधर, ख्याल आए आप अपने नमाज में लगे रहें। और अगर बिलफर्ज के साथ क्या करें, ख्याल आता है हम भी उसके साथ घूमने चले जाते हैं। तो याद रखें कि ख्याल आए, अगर आपका ख्याल कहीं गया दोबारा वो ख्याल वापस नमाज की तरफ ध्यान लगा दे बस। जी कोई ऐसा वजीफा दे दे कि नमाज में बिल्कुल ख्याल ही ना आए, तो याद रखिएगा इसके लिए कोई वजीफा नहीं है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने अपनी हालत को अर्ज किया कि मुझको नमाज में ख्यालात बहुत आते हैं, तो आपने फरमाया कि तुम्हारी नमाज बिल्कुल मुकम्मल है। यानी ख्याल का आना ये नमाज के लिए कोई मुजिर और नुकसान की बात नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। बस नमाज में ध्यान नमाज में रखें, और वो हल्का सा ध्यान इस तरह बना ले कि भाई मैंने सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ और मैं सूरत पढ़ रहा हूँ, और उसमें अगर ज्यादा अच्छा हो तो थोड़ा सा हल्का सा ध्यान तर्जुमे की तरफ रखे, ज्यादा अटेंशन पे ना करे, बहुत तवज्जो ना दे, वरना इससे दिमाग पर बोझ पड़ेगा, प्रेशर ना डाले अपने ऊपर, हल्का सा ध्यान, ख्याल जाए वापस ले, बस इस तरह रखे। तो ख्याल का आना कोई बुरी चीज नहीं है कि जी ऐसा हो कि जी हम नमाज पे जा रहे थे हमें ख्याल आए, तो गोया इंसान मुसलमान इसलिए परेशान होता है, वो समझता है कि शायद इसकी वजह से मेरी नमाज मुतासिर हो गई और मुझे नमाज में वो सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ख्यालात आते रहेंगे, उसकी तरफ परवाह ना करें। ख्यालात की मिसाल मेरे शेख फरमाते थे ऐसी है जैसे एक आदमी हाईवे पर जा रहा है, उसको मेलबर्न से सिडनी जाना है, अब हाईवे पर जा रहे हैं, वहां ट्रक भी चलेगा, कोई गाड़ी तेज जा रही होगी, कोई आहिस्ता जा रही होगी, और हमारे हाईवे पे तो क्या होता है कि गधा भी जा रहा होता है, साइकिल वाला भी जा रहा होता है, मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा होता है, लेकिन हर आदमी क्या करता है, वो अपनी डेस्टिनेशन और मंजिल पर नजर रखता है कि मुझको कहां जाना है। इस तरह तो हाईवे पे कोई तेज कोई आहिस्ता वो सब जाते रहेंगे, वो कहते हैं ये अपना काम जाने मैं अपना काम करूं। इसी तरीके से जब नमाज में खड़ा हो जाए तो वो ये ख्याल करे कि मैंने इस नमाज के जरिए से अल्लाह ताला को राजी और खुश करना है, अब उसके बाद ख्याल आए जाए उसकी तरफ तवज्जो ही ना करें। अब शैतान ने ख्याल डाला और इसकी नमाज इंसान भूल भी जाता है, जैसे कभी खड़ा होना होता है बैठ जाता है, कभी बैठना होता है खड़ा हो जाता है, अब क्या करें साहब, अब सजदा साफ करते हैं। तो फरमाते हैं कि हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे शेख फरमाते हैं कि अब शैतान ने नमाज में ख्याल डाला था ताकि इसको अल्लाह ताला से दूर कर दे, लेकिन फरमाते हैं कि हमने दो सजदे जो किए इससे मजीद दो कुर्ब अल्लाह ताला के मिल गए। यानी शैतान ने ख्याल डाला था अल्लाह से दूर करने के लिए, और हमने सजदा करके अपनी बंदगी का इकरार किया, अपनी आजिजी का इकरार किया कि अल्लाह ताला मुझसे ये गलती हुई, लगा उस गलती के बदले में मैं दो सजदे और कर रहा हूं। تو وہی خیال اس نے وسوسے ڈالے تھے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے. شریعت کی برکت دیکھے, اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی برکت دیکھیے کہ وہی وسوسہ اور خیال اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بن گیا. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے, مولانا قاسم صاحب نانتوی کے شیخ تھے, بڑے بڑے علماء مشائخ کے شیخ تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے خیالات بہت آتے ہیں, کہ جی یہ بھی خیال وہ بھی خیال یہ بھی خیال وہ بھی خیال. تو فرمایا کہ جب تمہیں خیال آئے کرے نا تو تم بھی خیال کیا کرو. حضرت وہ کیا خیال کیا کرو, اللہ میاں اتنا چھوٹا سا دل ہے, چھٹانگ بھر کا پاؤ بھر کا, کتنا چھوٹا سا دل ہے, لیکن اس دل کے اندر پوری دنیا گھسی چلی آ رہی ہے. اب چھوٹا سا دل ہے میلبرن, ہمارا جسم بھی اس سے بڑا ہے, میلبرن پھر آسٹریلیا پھر پورا جو ہے وہ کیا نام ہے آسٹریلیا کا کانٹیننٹ پھر پوری دنیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل ایسا بنایا کہ اس میں پوری دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں, حالانکہ چھوٹا سا دل ہے. دادا وہ کہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے کیسا دل بنایا کہ اس میں ماضی کے بھی خیال آ رہے ہیں, فلاں بات بھی آ رہی ہے فلاں بات بھی آ رہی ہے, واہ میرے مولا آپ نے کیسا عجیب دل بنایا. فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے, اس نے اسی وسوسے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا لیا. دادا شیطان نے نماز میں وسوسہ ڈالا تھا کہ اس کو اللہ سے دور کریں گے, ہم وہ اللہ تعالیٰ اس نے دو سجدے کر کے مزید دو قرب لے لیے, دو قرب. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے, مشہور بات ہے, علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے, اعلی قدم ہے یہ رحمان, رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو وہ تو دور کیا تھا, اب وہ رحمان کے قدموں میں گر گیا اور دو قرب اور مل گئے, سب سے زیادہ قرب ملتا ہے. اور اس قرب کو سمجھنے کے لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ماں رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا لے کے ذوق سجدائے پیشے خدا, لے کے ذوق سجدائے پیشے خدا, خوش تر آیت از دو صد ملکت تورا, کہ مجھے ایک سجدے میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ملتا ہے کہ اگر تجھے 200 ملکوں کی سلطنت یعنی سارے عالم کی دنیا ساری دنیا کی اگر تجھے سلطنت ملے تو جو لذت اور جو مزہ تجھے ملے گا اس سے زیادہ لذت اس سے زیادہ مزہ ہمیں ایک سجدے کے اندر آ جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے, فرمایا اسی کی وجہ یہ ہے کہ اس رحمان کے قدموں میں سجدہ کیا, اس اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کیا جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. دادا اس کو تو بادشاہت ملی, یہاں بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا مل گیا. اس کو سمجھانے کے لیے اور بات فرمائی, ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جو مشہور ہیں اور محمود و ایاز والے جن کا عاشق غلام تھا ایاز, ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کے اندر اپنے دربار کے اندر اعلان کیا, آج جس آدمی کو جو کرسی چاہیے وہ اس کو کرسی ملے گی, جس کو جتنا سونا چاندی چاہیے وہ اس کو ملے گا, جس کو کوئی جائیداد جو چاہیے وہ ملے گا, آج کوئی iPhone 5 مانگے گا اس کو وہ بھی ملے گا, اور کسی کو S5 چاہیے وہ بھی ملے گا, اور جو ان سی گاڑی چاہیے وہ گاڑی اسے ملے گی. بس اب سب جو بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے, اب S5 کا عاشق اس کی طرف بھاگا, iPhone والا iPhone کے پاس گیا, کسی کو گاڑی چاہیے تھی بینٹلے اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے سونا چاندی اور ڈالر لے لیا. اب ایاز بیٹھا ہوا ہے تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ دیکھو یہاں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور تم ایسے کیسے بیٹھے ہو, تم یہ سب کچھ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ ایاز اٹھا اور گھوم کر آیا اور بادشاہ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا رہے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا, لہذا میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا, میں آپ کا ہو گیا, آپ میرے ہو جائیے. بادشاہ نے کہا رہے ظالم یہ تو دیکھ اس کے پاس گاڑی کون سی ہے, اس کے پاس iPhone کا, اور اس کے پاس دیکھ کتنا اچھا مکان ہے, کتنے اچھے ہر چیز ہے. کہا بادشاہ سلامت وہ سب بات اپنی جگہ ہے, اس کے پاس نعمتیں ہیں, یہ سب چیزیں آپ کی ہیں, میرے پاس تو آپ ہیں. میرے پاس تو آپ ہیں، یہ ساری نعمتیں یہ سب چیزیں تو آپ کی ہیں، لہذا ایک شخص وہ ہے، ایک شخص زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ملک ملے گا، سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی، زیادہ سے زیادہ کتنے ملکوں کی سلطنت لے گا کیوں جناب، اور کتنی لے گا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا عاشق اور فرمانبردار وہ ہے جو سارے عالم کو بادشاہت کی بھیک دینے والا، سارے عالم کو سلطنت کی بھیک دینے والا، وہ مل جائے اس کو، آپ بتائیے سودا کیوں جناب، کیا سودا ہے اس کا؟ لہذا یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے عاشقوں کو جو سجدے میں لذت عطا فرماتے ہیں، مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ذکر کیا کہ لے کے ذوق سجدائے پیشے خدا خوشتر آیت از دو صد ملکت تورا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک سجدہ کرنے کا مزہ اتنا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت بھی اگر ملے اس سے زیادہ لذت اور مزہ ہمیں ایک سجدے میں مل جاتا ہے. یہ چیز ہے. تو اب تراویح کو دیکھیے، دن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو رکھا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، اور جب رات آئی کہا 20 رکعت پڑھو. اصل میں کیا ہوا کہ دن کو دل کا جو برتن ہے، وہ جو کنٹینر ہے، اس کو خالی کر دیا، اب دل ٹوٹ گیا، اب یہ بروکن ہارٹ رکھتا ہے اپنے پاس. اور ٹوٹے ہوئے دل کی اہمیت میں آپ کو کیا بتاؤں، اس لیے ویلنٹائن ڈے پہ جب اس کو موقع نہیں ملتا تو وہ بھی اپنا ٹوٹا ہوا دل ایرو بنا کر، نشان بنا کے بھیجتا ہے کہ جی بروکن ہارٹ ہے. تو اب وہ دن کو اس کا جو وہ دل کا کنٹینر تھا وہ خالی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 20 رکعت تراویح رکھی، ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 20 رکعت تراویح میں کتنے ہوئے؟ 40 سجدے. یعنی اللہ تعالیٰ رات کو اپنے عاشقوں کو، مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو رات میں رمضان شریف میں 40 قرب خاص عطا فرماتے ہیں. لذا عاشق کا کیا حال ہوگا، اس کی لذت کا کیا عالم ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان غیر رمضان میں ان لذتوں کو سوچتا ہے جو رمضان میں ملتی ہے. واہ! اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب روزے کی حقیقت کو دیکھیے، ہماری نظر اس بات پر ہے کہ جی روزہ ہم نے رکھا اور صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے، ہماری نظر اس بات پر. اور روزے کی حقیقت یہ ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو کتنا عجیب انداز اختیار کیا، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے میرے عاشقوں. کیونکہ ایمان والے عاشق ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لہذا اہل محبت کو اگر کوئی بات کہی جائے اس کو مشکل لگتی ہے. یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کو کچھ کہہ دے تو یہ بات مشکل لگتی ہے، بلکہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انداز کیسے اختیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم. اب کہے کہ روزے فرض کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جیسے تم نے روزے رکھے تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی. لہذا انسان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو کام میں اب کرنے لگا ہوں یہ تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے، اچھا یا پھر تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ انسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ اپنے کمزور بندوں کو کس طرح سمجھائے کہ دیکھو یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ تعالی وسلم تک سے پہلی امتوں تک سب نے روزے رکھے، سب نے روزے رکھے. لہذا یہ جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، جو چاند کی 13, 14 اور 15 وہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یہ پہلی امتوں میں یہ سب روزے تھے. اور یہ جو مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزے کو رکھا ہے. لہذا جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے तो वहां में जो यहूद रहते थे उन्होंने रोजा रख देखा, तो आपने पूछा ये तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि हम ये रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के मजालिम से जुल्म से नजात दी थी, इसलिए हम उसको शुक्रिया में रोजा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मूसा का हम पर ज्यादा हक है, लेकिन आपने फरमाया कि देखो 10 मुहर्रम का रोजा मुसलमानों को सिखाया कि तुम सब 10 का न रखना, बल्कि 10 के साथ या तो 9 का भी रखना या 10 के साथ 11 का भी रखना। ऐसे ही ना जनाब, दादा हम 2 रोजे रखते हैं उसमें, अगर कोई रखे तो उसमें फिर 2 रोजे रखने चाहिए। और ये हुक्म सिर्फ मुहर्रम के लिए खास है, यानी 10 मुहर्रम के लिए, बाकी किसी और रोजे के लिए नहीं है। तो उसके साथ 10 के साथ या तो 9 मिलाए या 10 के साथ 11 मिलाए। दादा वो सब भी रोजे थे। फिर जब रमजान, अच्छा रमजान शरीफ के रोजे पहले ईसाई रखते थे, रमजान में रोजे ईसाई रखते थे। दादा अल्लाह ताला ने हमको भी यही फरमाया कि देखो तुमसे पहले वाले भी तो लोग रोजा रखते थे। कोई इंसान को होता है भूखा प्यासा रहूंगा, ऐसा ना हो मर ना जाऊं, एक ही डर होता है। और अजीब बात यह कि आजकल जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले कहते हैं जनाब आप जो है ओवरवेट हो रहे हैं, जरा आप अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। डॉक्टर साहब मैं तो रोजा रखने के तसव्वुर से मेरे होश उड़ जाते हैं, आप मेरी डाइट कम करा रहे हैं, और फिर वो भी चीज ना चीज हूं लेकिन चीज तो बड़े शौक से खाता हूं, और वो भी क्रीम चीज हो, फिर चॉकलेट, फिर ड्रिंक्स, दरअसल ये सब छोड़ दूं। डॉक्टर कहता है कि देखो अगर तुमने ये सब काम जारी रखा तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, किसी वक्त भी तुम्हें अटैक हो सकता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जा रहा है, और ये चीज तुम्हारे लिए मुजिर है। वेट तुम ज्यादा समझाता है। अब वही हॉस्पिटल से घर आया, अब बीवी ने उसके सामने लाकर चीज रखी और मक्खन रखा और ऐसी मजे की चीजें, अब वो खुद देखता तो है लेकिन खुद ही हटा देता है उसको। बीवी ने कहा ये क्या, आप तो चीज के बगैर नाश्ता नहीं करते थे, मक्खन के बगैर, आज ही आप क्या कर रहे हैं? तो यही कहता कि भाई डॉक्टर ने मना किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर की बात मानकर हम कितनी चीजों से रुक जाते हैं, ऐसा ही है ना। अगर अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी बात को मना फरमाया, यकीन जानिए उसमें हमारे लिए फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। तो अब डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर कहता है एक तो वॉक करें आप, और वो भी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, वॉक भी करें और एक्सरसाइज भी करें, ताकि आपकी जो हेल्थ है और जो सेहत है वो मेंटेन रहे और आप उसके अंदर कुछ। तो उस वक्त डॉक्टर की बात मानकर खाना भी कम कर देते हैं। उस वक्त डॉक्टर ने बोलते मैं मर जाऊंगा, हाँ तुम्हें जिंदगी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने ये जो रोजा रखा शुरू से लेकर शाम तक, इसमें भी मेरे दोस्तों हमारे लिए जिंदगी है। आगे फरमाया जो रोजे की हकीकत है वो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये है रोजे की हकीकत। अब तकवा क्या चीज है और तकवा का फायदा क्या है, ये बहुत एक खास बात है। तकवा नाम है गुनाह करने को दिल चाहे, गुनाह करने को दिल चाहे यानी उसके अंदर तकाजा मौजूद हो और फिर गुनाह ना करना, इसको कहते हैं तकवा। यानी एक आदमी है उसका गुनाह करने को दिल ही नहीं चाह रहा, यानी और वो तो उसको तब मुत्तकी नहीं कहा जाएगा। जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्तों को मुत्तकी कहने के दुरुस्त नहीं है, मुत्तकी कहना वो मासूम है क्योंकि उनके अंदर गुनाह का तकाजा ही नहीं है। मसलन किसी हसीन को देखने को, किसी सेलिब्रिटी को देखने को उनका दिल ही नहीं चाहता, उनकी नजर में मिट्टी और ये औरतें एक बराबर है। ये तकाजा अल्लाह ने हमारे अंदर रखा। कैसे, मसलन बीवी ने कुछ कहा उसको गुस्सा आ गया, ये शौहर ने बीवी को कुछ कहा उसको गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से को इसलिए जब्त कर रहा है कि देखो ये अल्लाह की बंदी है। शौहर सोच रहा है कि देखो ये बुरी बात है, गुस्सा करना नहीं चाहिए, मुझे जरा थोड़ा सा इसको हम्बली में इस मैटर को डील कर लूं, इसको देख लूं, थोड़ा सा तहमुल कर लिया, बर्दाश्त कर लूं। और बल्कि ये भी ख्याल आया कि देखो ये किसी की बीवी है, ये जो मेरी बीवी है वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर मेरी बहन और मेरी बेटी को उसका शौहर उस पर जुल्म करे, गुस्सा करे, तो क्या हाल होगा? उसको समझाएगा कि देखो वो औरत है, तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने औरतों के हक में मर्दों को फरमाया कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम मेरी बंदियों के साथ भलाई से पेश आओ, नरमी इख्तियार करो, अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर दो, उनके साथ ऐसा मामला रखो। और उधर औरतों को सिखाया कि देखो इनका हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हक फरमाते हैं कि अगर किसी को सजदे का हुक्म होता तो बीवियों को हुक्म होता कि वो शौहरों को सजदा करें। इसने उनको अजमत सिखाई कि यानी अपने शौहरों को खुश करो, उनकी खिदमत करो। तो ये आपस में गाड़ी मिलजुल कर चलेगी, फिर जब ये पेयरिंग हो जाएगी ना, पेयर्ड हो जाएगा, तो फिर उसका जिंदगी का मजा ही कुछ और है। शौहर इसलिए गुस्से को बर्दाश्त कर रहा है कि किसी की अल्लाह की बंदी है, मेरी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। बीवी उसको इसलिए वो उसके अब गुस्से को बर्दाश्त करती है, उसके साथ ऐसा नहीं करती, खिदमत करती है कि चलो मेरा अल्लाह खुश होगा। यानी अब शौहर की नजर भी अल्लाह पर है और बीवी की नजर भी अल्लाह पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उस महापुरुष रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में लज्जत कैसी आ जाएगी? बस यही वो चीज है कि जिसको कहते हैं तकवा। मेरे शेख रहमतुल्लाह एक बात फरमाते थे, देखो ये जो गुस्सा होता है ना, ये बड़ा चालाक होता है, हमेशा कमजोर पर आता है। गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है, इतना चालाक होता है। मसलन किसी को किसी कांस्टेबल पे, पुलिस वाले पे कभी गुस्सा नहीं आता, बल्कि एयरपोर्ट पे जाए तो एक मामूली सा वहां के जो मुलाजिम भी अगर कुछ कहते कि आप यहां खड़े हो जाएं, हिलना मत, वो वहीं खड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं वहां से। और कमजोर पर गुस्सा आता है। मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद मजहर साहब दावत बरकातुम, मेरे शेख के मुर्शिद अव्वल के बेटे भी हैं, उनके इंतकाल के बाद इसका ताल्लुक हजरत से किया। वो किस्सा सुनाते हैं, एक लखनऊ के साथ बहुत ही सूटेड बूटेड होके निकले, किसी बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे थे तो अचानक कोई चीज ऊपर फेंक दी, उन्होंने देखा दाल, बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में कहा किसने दाल फेंकी? तो ऊपर से आवाज आई मैंने, नीचे आओ। अब वो नीचे आया तो बॉडी बिल्डर जनाब, आर्नल्ड की तरह से। अब वो बॉडी बिल्डर साहब आए, उसने ऐसे सीना निकाल कर कहा, बोलो क्या बात है? अब उसने देखा बॉडी बिल्डर, उसने दाल ली, जबान पर रखी, उसने कहा वाह वाह कितनी मजेदार दाल है, अगर थोड़ी सी प्लेट में मिल जाती तो क्या बात थी। इसलिए फरमाया गुस्सा बड़ा चालाक होता है, हमेशा कमजोर पर आता है, कभी ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता। और अल्लाह ताला ने अपने आशिकों के लिए क्या फरमाया कि जो हमारे आशिक है वल काज़िमीन अलगैज, अगर जो उनको गुस्सा उनको भी आता है लेकिन गुस्से को पी जाते हैं, इसको कहते हैं कज़्म गैस, गुस्से को बर्दाश्त करना, पी जाना। जैसे बॉस पर गुस्सा भी आता है लेकिन कहता है फिर पी जाए, और पीने में भी क्या करता है, इडियट नॉनसेंस नालायक, अपने अंदर ही अंदर, लेकिन बर्दाश्त करता है ना, तो बर्दाश्त करना चाहिए। उसी तरह से यही तो मजा है कि अगर किसी पुलिस वाले के सामने गुस्सा बर्दाश्त किया तो क्या मजा, मजा तो यह है कि कमजोर है, बीवी ने कुछ कहा वहां बर्दाश्त करे। ऐसे ही बीवी, मान लो कि उसको मालूम है कि जी मेरे राइट्स ऐसे हैं, सब कुछ ऐसा, लेकिन उसकी नजर अल्लाह ताला पर, कि देखो अल्लाह ताला ने इसका ये हक रखा है। वो अल्लाह पर नजर रखे, शौहर भी अल्लाह पर नजर रखे, बीवी भी अल्लाह पर नजर रखे, तो मेरे दोस्तों फिर इस रिश्ते की चाशनी, मोहब्बत और मिठास ही कुछ और, स्वीटनेस ही कुछ और होगी। अभी तो हम वक्ती चीज को देखते ना कि ये ऐसी फला ऐसा, वो ऐसी फला ऐसा, बीवी शौहर पर उसको ब्लेम करे, शौहर बीवी को ब्लेम करे, लेकिन अगर दोनों अल्लाह ताला पर नजर रखे तो उसकी लज्जत और मजा वही घर मिसाली घर बन जाएगा। तो तकवा किस चीज का नाम है? गुनाह करने को दिल चाहे, मसलन अब सड़क पर जा रहे और फिर यूरोप ऑस्ट्रेलिया यहाँ की तो आलम क्या है कि हर तरफ बेपर्दा, और बेपर्दा एक तो क्या होता, वो तो तमाम हदें क्रॉस कर गए बेहुदा। अब उसका दिल चाह रहा है कि मैं देखूं कि यहां पर तो कितनी आसान है ये देखना, लेकिन उस वक्त उसको ख्याल आता है कि देखो अल्लाह ताला ने मेरे इस देखने को मना फरमाया और मेरी नजर पर उनकी नजर है। मेरे मुशेक का शेर है, मेरी नजर पर उनकी नजर पासबान रही, मेरी नजर पर उनकी नजर यानी अल्लाह की नजर निगरानी करती रही, सिक्योरिटी चेक लगा हुआ, यू आर मॉनिटर्ड बाय रडार। देखिए ना लिखा होता है स्पीड कैमरा अहेड, यहाँ के वर्डिंग्स मुझे नहीं पता लेकिन अक्सर हाईवेज पे लिखा होता है ना, आप दुनिया में जाएं, स्पीड कैमरा अहेड, यू आर मॉनिटर्ड बाय रडार, यू आर मॉनिटर्ड बाय कैमरा, है ना, योर स्पीड इज बीइंग वॉच्ड, किस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं। तो वो उसी तरीके से जब वो जो स्पीड लिमिट आती है तो उसके जैसी ज्यादा जाने लगता है फ्रंट ब्रेक लगा देता है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चाहे हसीन सामने आए, दिल चाहे कि मैं इसको देखूं, लेकिन उसके कान में आवाज आती है उल लिल मुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम, ए ईमान वालों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों से फरमा दीजिए किसी की माँ बहन को अगर चाहिए अंग्रेज औरत है, किसी ने कहा साहब ये तो अंग्रेज है, इनको तो देखो, ये कोई मुकल्लफ थोड़ी, इनको खूब देखो, जी भर के देखो, नंगी है तो इनको देखो और घूर घूर के देखो, आगे से क्या कहते हैं, घूर घूर के देखो। तो अगर चाहे वो तो मुकल्लफ नहीं है, हम तो मुकल्लफ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो खजाना है दिल का, मेरे मुर्शिद एक मिसाल से समझाते हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया कि आप अपने जो अंडरग्राउंड टैंक पानी के और जो ओवरहेड जो टैंक्स हैं उनको भी आप जो भर ले, क्योंकि एक हफ्ते तक पानी नहीं आएगा। अब उसने रात भर मोटर चलाई, अपने टैंक्स भर लिए, लेकिन वो जो अपने नलके है, वो जो टैप है, वो कहीं खुला हुआ है, कोई खुला हुआ है, नतीजा क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा हफ्ता भर, दो दिन में तीन दिन में परेशान हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से जब हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, सुन्नतों पर अमल करते हैं, दिल में नूर आता है। और जब ये आंखों से किसी की माँ बहन को देखा, कान से गाना सुन लिया, जबान से झूठ बोला, किसी की गीबत की, तो उसके इसके नतीजे में वो जो हमारे दिल में जो नूर होता ना, वो इन रास्तों से निकल जाता है। उसी वजह हम कहते हैं जी हमें नमाज से फायदा नहीं मिलता, हमें जिक्र से मजा नहीं आता, सहाबा के किस्से पढ़ते हैं, उलमा औलिया अल्लाह के किस्से पढ़ते हैं कि साहब उनको इतनी लज्जत, हमें तो कुछ नहीं आता। वो फिर कहते हैं कि जिस नमाज में हमें मजा ही नहीं आ रहा, ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा। दादा मुसलमान अच्छा भला नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज छोड़ देता है, हालांकि नमाज का कसूर नहीं है मेरे दोस्तों, कसूर नमाज का नहीं है, कसूर हमारा है कि वो जो नूर उस नमाज से इबादत से मिलना था उस नूर की हमने हिफाजत नहीं किया। एक आदमी पैसा कमाता है, अपनी सैलरी लेकर आ रहा है, वेजेस लेकर आ जाए, अब उसकी जेब में डाकू ने उसको जो पैसा छीन लिया, एक वीक ऐसा हुआ, सेकंड वीक ऐसा हुआ, थर्ड वीक ऐसा हुआ, कहता अच्छा मैं अब कमाने नहीं जाऊंगा, कोई है ऐसा कल। हमारे एक दोस्त ने सुनाया कि साउथ अफ्रीका में वहां पे एक साहब जो है वो फ्राइडे को वहां पर वो जो है वीकली वेजेस मिलते थे, तो वो लेकर आए तो वो डाकू खड़े थे, उन्होंने वो छीन लिए पैसे। क्या सेकंड वीक यही हुआ कि वो फिर लेकर आ रहे थे फ्राइडे को, सबको मालूम होता है फ्राइडे को वेजेस मिलते हैं, तो उन्होंने फिर छीन लिया। तो जब थर्ड वीक आ रहे थे, अब बीवी भी परेशान, अब दो हफ्ते दो वीक ऐसे ही गुजरे, दो वीक ऐसे गुजरे कि बहुत वीक हो गए। तो बीवी ने सुबह समझाकर भेजा, देखो जरा कुछ करो, कोई तरकीब लड़ाओ, कुछ सोचो कि पैसे कैसे बचाना है। उसको ख्याल आया, उसने क्या किया कि अब जब वेजेस लेकर आया तो बेकरी में गया, वहां एक बड़ा बन था, उस बन को काटा और पैसे उसमें रखे और बन लेकर अब वो ब्रेड लेकर जा रहा है। अब जब उसी पॉइंट पर पहुंचा, वही डाकू फिर पहुंच गए। डाकू ने कहा निकालो गन, निकाली लाओ दो पैसा। उनमें से एक डाकू रहम आया, उसने कहा देखो ये बेचारा वो है जिसको हमने पहले वीक भी हमने लूटा, सेकंड वीक भी, आज भी फिर इसके बेचारे का गुजारा कैसे हुआ, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अच्छा एक काम करो तुम डबल रोटी दे दो, तुम चले जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इबादत, अब वो आदमी, अब ये तो नहीं होगा ना कि कहेगा यार हर हफ्ते तो मुझे डाकू लूट रहे थे, अब मैं कमाना छोड़ दूं। है कोई अकलमंद ऐसा? वो प्रोटेक्शन करेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऐसे स्टेप लेगा कि मैं सिक्योर हो जाऊं, ना कि वो उस अमल को, उस प्रोसीजर को, उस कमाने को, इस इनकम को गेन करने को। है कोई अकलमंद जो छोड़ देगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोड़ने की चीज गुनाह थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी थी। अजीब बात, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी हम छोड़ देते हैं। इसलिए उसमें लज्जत, हाँ तकवा इख्तियार करें। और रोजे का मकसद भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया। लिहाजा आप देखिए रोजे में इंसान खुद ब खुद जरा पीछे हट जाता है, और कैसे कि जी नजर भी बचानी है, नहीं भाई मेरा रोजा है, उसको ख्याल आता है। झूठ बोलने का दिल चाहता, ख्याल आता नहीं मेरा रोजा है, तो सुभान अल्लाह। गीबत आते कोई ऐसा मौका आता है, कहता है नहीं मेरा रोजा है, तो पता चलो रोजा उसको रोक लेता है। बस यही रोजे में अल्लाह ताला रमजान शरीफ में उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे लिए अच्छा, फिर हराम तो दूर की बात, हलाल, जैसे खाना पीना हलाल है, लेकिन रोजा होता है दिल चाहता है, प्यास लगी है, उसको तरबूज भी नजर आ रहा है, मुंह में पानी भी आता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, कहता है नहीं मेरा रोजा है। तो जब अल्लाह ताला एक महीना उसको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि देखो तुम एक महीने हलाल चीजों से भी बच गए, जब हलाल से बचना आसान है तो हराम से बचना क्या मुश्किल है। सही है जरा, ये अल्लाह ताला ने रखा रोजा। अब रही बात कि रमजान शरीफ के बावजूद हमारे अंदर तकवा वाली बात पैदा नहीं होती कि जी प्रेशर आता है फिर हम वही हो जाते वैसे के वैसे। इसके लिए अल्लाह ताला ने जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, अल्लाह ताला ने यही तकवा का जिक्र किया कि ऐ मेरे आशिको तुम मुत्तकी बन जाओ। और एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तकवा क्या है, इन औलिया उहू इल्लल मुत्तकून, हमारा कोई दोस्त नहीं है लेकिन वो लोग जो तकवा से रहते हैं। तो पता चला अल्लाह ताला ये जो तकवा है ये अल्लाह ताला की फ्रेंडशिप और दोस्ती दिलाता है, ये दोस्ती दिलाता है। और इसलिए आगे फरमाया, अल्लाह ताला करम देखिए आगे काम और आसान कर दिया, फरमाया कूनू मा सादिकीन, तुम अल्लाह वालों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, यानी जो तकवा में सच्चे हैं। तो नतीजा क्या होगा कि देखिए जरा, होता ही है एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी बात है कि एक आदमी अगर ऑस्ट्रेलिया आ गया ना किसी फैमिली का या किसी लोकेलिटी एरिया का, तो फिर उसकी वजह से दूसरे लोग भी आते हैं, होता है कि नहीं, तो वो उसको प्रोसीजर समझाते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने रखा है कूनू मा सादिकीन, वो लोग जो गुनाह से बच रहे हैं, जो तकवा से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गुनाह से बचने का कदम उठा रहे हैं, जो उस प्रेशर को, जो जमाने का, इन हसीन औरतों का, बेपर्दा होते औरतों का जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ रहो तो यही बात तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। यही है मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, किसी अहले दिल की सोबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। ये चीज है दादा रमजान शरीफ, जो तकवा जिसका मकसद है, और अल्लाह वालों की सोबत से वो तकवा की नेमत मिलती है। तो अगर रमजान शरीफ किसी अल्लाह वाले के साथ गुजार ले, लेकिन हम प्लान करते हैं कि जी इस दफा वेकेशन होगी, या हमारी जो है वो एनुअल जो है वो हॉलीडेज आएंगी, तो हम फला फला जगह जाएंगे, प्लान करते ना। एक प्लानिंग ये भी कर ले कि एक रमजान शरीफ किसी अल्लाह वाले के साथ गुजार ले, उसके पास वक्त लगा ले, ताकि उससे तकवा सीख ले, तो अल्लाह ताला की दोस्ती मिल जाएगी। फिर ये जो जितनी चीजें, और ऐसा नहीं होता कि ये कि जो अल्लाह वाला बन जाता है उसको गुनाह करने का दिल नहीं चाहता, उसका भी दिल चाहता है, लेकिन उसकी मिसाल ऐसे तरबियत याफ्ता सिविलाइज्ड घोड़े की तरह हो जाती है, उस तरबियत याफ्ता मुहज़्ज़ब घोड़े की तरह हो जाती है कि सरकशी वो भी दिखाता है लेकिन जरा सी लगाम खींचने से वो ठीक हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह से ये जो हमारा नफ्स बेलगाम है कि जिस पर कोई लगाम नहीं है, जब किसी इंसान अल्लाह हवाले से ताल्लुक करता है वो अपने को उसके हवाले करता है, उससे गाइडेंस लेता है, उससे एडवाइस और हर मौके के ऊपर उससे मशवरे करता रहता है, नतीजा ये होता है मेरे दोस्तों कि उसके लिए जिंदगी गुजारना, ये जमाने का प्रेशर, ये जो सब चीजें उसको बर्दाश्त करना उसके लिए आसान हो जाता है। क्यों? उसकी तरबियत हो जाती है। एक बात सुना के खत्म करता हूं। दुबई में एक दफा वहां पर कुछ आईटी के प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे, तो मुझसे कहने लगे कि अल्लाह वालों की सोहबत क्यों जरूरी है। मैंने कहा वो आईटी के फील्ड है, अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए उन्हीं के अंदाज में अता फरमाया। मैंने कहा देखिए जनाब, आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्या इसलिए ताकि जो कोई जो बग्स वगैरह हैं, कोई वायरसेस वगैरह हैं, उनको वो जो है अगर हो तो किल कर दे, अगर हो तो किल कर दे और उसके बाद फिर वो प्रोटेक्शन देता है, फिर वो प्रोटेक्शन कर देता है कि वायरस को आने नहीं देता, वायरस को आने नहीं देता। मैंने कहा पहले कि उसके लिए क्या करते हैं आप, उस एंटीवायरस को उसमें इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद वो आपकी जो है वो पूरा वो उसको यानी सर्चिंग करता है और उसको फिर वो उसके बाद अगर कोई वायरसेस हो तो उसको किल करता है, बास को क्वारंटाइन कर देता है, बास को किल कर देता है, फिर आपको रिपोर्ट देता है कि जनाब बाबा आपका कंप्यूटर नाउ यू आर सेफ, यू आर फुली प्रोटेक्टेड। उसके बाद लेकिन वो ये भी कहते हैं कि टाइमली आप वायरस डेफिनेशन को डाउनलोड करते रहे। ऐसा ही होता ना जनाब, लगभग उसमें खुद अपनी सेटिंग में पूछता है कि वीकली बेसिस पे करना है या डेली बेसिस पे करना है, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे, ऑटोमेटिक करना है या मैं आपको नोटिफाई करूं उसके बाद आप करेंगे, है ना, ये सब चीजें होती है। वो भी कर लिया, अच्छा जनाब आपने वो कर लिया, टाइमली आप उसको जो है वो वायरस डेफिनेशन को अपडेट करते रहते। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ वायरस अटैक करते रहते, लगभग वो उसको जो बास को तो ऐसा करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद फिर एक काम और भी होता है, वो ये कि फिर आपको वो सॉफ्टवेयर वालों की तरफ से आता है कि देखिए ये जो आप अब जो वर्जन है ना ये ऑब्सोलीट हो रहा है इतने दिन के बाद, अब आप इसको अपग्रेड कर लें। बाज मरतबा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, बाज मरतबा वो कुछ पैसे मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब आपके ये इतने अरसे के बाद ये जना आपका ये वर्जन जो है ऑब्सोलीट हो रहा है, अब इसको अपग्रेड करें आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत भी यही है कि अल्लाह वालों की सोहबत से कल्ब को एक जो ताल्लुक और एक चीज मिलती है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम देती है, यानी दिल में जो गैरुल्लाह है वो गैरुल्लाह को दिल से खाली करता है। और ये आलम होता है, दिल मेरा हो जाए एक मैदान हूँ, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर। ये आलम होता है उसका कि वो, और फिर अब वो क्लीन तो कर दिया लेकिन साथ साथ ऐसा ना कोई राह पा जाए ना कोई गैर आ जाए, ना कोई राह पा जाए ना कोई गैर आ जाए, हरी में दिल का अहमद अपने हरदम पास बाह रहना। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे दादा शेख हैं, मेरे शेख के भी शेख थे, वो फरमाते हैं कि यानी अब वो जो है वो प्रोटेक्शन ऐसी हो कि कोई वायरस आ भी ना जाए और गुजर भी ना जाए, क्योंकि गुजरते गुजरते भी नुकसान पहुंचा जाता है।